بی لوکر. اور انہوں نے آج وہ جس وقت وہ لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر بڑے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے پی ایم سٹیزن اسسٹنس اینڈ ریلیف ان ایمرجنسی سچویشن فنڈ, جس کو کہ پی ایم کیئرز فنڈ بھی کہا جاتا ہے, اس میں صرف گورنمنٹ امپلائیز نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی کروڑز آف روپیز جو تھے وہ ڈونیٹ کیے تھے. اور اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ نے اور مودی جی نے کہا تھا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے ہم وینٹیلیٹرز کو بائے کرنے میں لگائیں گے اور کووڈ کو ٹیکل کرنے میں لگائیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. یہ لیکچر آج بیسیکلی دے رہے تھے آر ٹی آئی ایکٹ پہ, جس کے انڈر یہ سارے لاز بنائے جاتے ہیں کہ یہ جو ساری ڈونیشنز آئیں گی یہ گورنمنٹ کہاں کہاں کرے گی. وہ کہتے ہیں جی کہ پی ایم کیئرز کی جو ویب سائٹ ہے وہ تو یہ شو کرتی ہے کہ کروڑز آف روپیز آئے ہیں, لیکن جو 2020 جو مارچ 28 سے مارچ 31 2020 کی جو رپورٹ ہے وہ کچھ نہیں بتا رہی کہ اس پیسے کو کدھر خرچ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کی آڈٹ رپورٹس بھی دیکھی ہیں, ان آڈٹ رپورٹس میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور وہ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو 2021 بھی ختم ہونے کیوں ہے, تو 2021 کی بھی کوئی آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے پی ایم کیئرز کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ پیسہ کدھر خرچ ہوا ہے اور کہاں گیا یہ سارے کا سارا پیسہ. تو آج انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سینٹر کی گورنمنٹ کے لیے کہ جو انہوں نے ایمرجنسی فنڈ کووڈ کو ٹیکل کرنے کے لیے اٹھایا تھا اس کو اگر صحیح جگہ پہ نہیں لگایا ہے تو وہ کہاں لگایا گیا, کیونکہ ایٹ لیسٹ جو پی ایم کیئرز کی ویب سائٹ ہے اس میں سارا یہ ڈیٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اس طرف کیا, کیونکہ گورنمنٹ کا یہی پرومس تھا کہ ہم اس کو جو ہے یہ ان چیزوں پہ لگائیں گے, تو اس کے اوپر نہیں لگایا. تو اس کے اوپر آج کافی جو ہے وہاں پہ شور مچا ہے. اور تھوڑی سی افسوس کی بات یہ ہے انڈیا سے کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں منموہن سنگھ صاحب, 89 ایئرز ان کی ایج ہے, تو کافی وہ بیمار ہو گئے ہیں, بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں, اور ان کو جو ہے داخل کیا گیا ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں. انہوں نے کچھ کمپلین کی تھی کہ مجھے ویکنیس اور فیور فیل ہو رہا ہے, تو جب ان کو فیور آیا تو ویسے وہ ٹھیک ہو گئے, لیکن پھر بھی ان کے بعد اس کی حالت ان کی ذرا خراب ہو گئی, تو ان کو جو ہے اب ایمز میں وہ جو ہاسپٹل ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ادھر ڈالا گیا ہے. اپریل کے مہینے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ بیمار ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے, تو ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا تھا, تو اب پھر سے ان کو کیا ہے, تو اب یہ اس وقت جو ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں اور فلوئڈس کے اوپر ہیں, تو اب پتا چلے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے.
یو آر لسننگ ٹو ڈبلیو ٹی او آر 770 AM ینگس ٹاؤن ٹورانٹو.
اچھا جی, آج جو ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے آج پھر سے ایک دفعہ کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کی اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں قمر باجوہ صاحب, ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں, اور ان کے بیچ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھئی ان کے بیچ میں وہ جو کنسلٹیشن پروسیس تھا کہ جس میں کہ انہوں نے یہ بات کر رہے تھے کہ اب نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوئے گا, وہ طے پا گئی ہیں اور اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ جو کی جائے گی. ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ جو جنرل فیض تھے وہ چاہتے تھے ابھی یہ عمران خان صاحب کے جنرل فیض جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کا بھی ہیڈ رکھا جائے, کیپنگ ان ویو دا اوریجنل سچویشن, لیکن ملٹری نے کہا کہ نہیں اب ان کو جو ہے پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا جائے اور ان کو. تو عمران خان صاحب نے کل ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ بھیجیں نام مجھے, تو دین آئی ول ریکمینڈ کہ کون سے, آپ اپنی ریکمینڈیشنز بھیج سکتے ہیں اور میں اس پہ کروں گا. تو آج فواد چودھری کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے ریکمینڈیشن ملٹری نے اپنی بھیجی تھی اور وہ ساری کنسلٹیشن ہو گئی اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو بہت زیادہ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن تھی اور جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے بیچ میں اب لڑائی شروع ہو گئی ہے, یہ وقت کوئی لڑائی نہیں ہوئی ایز فار ایز دا کنٹریز سیکورٹی از کنسرنڈ, ان کے بیچ میں جو ہے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب جلد ہی نام جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے گا. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بات جو ہے وہ کی تھی. اچھا جی, آج تو کچھ نیا ہی ڈھنگ چل پڑا ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو مریم نواز ہیں پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ, ان کا وہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں اس سلسلے میں ان کا چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے. آج جو ان کے لائر ہیں انہوں نے جناب وہ پوری کی پوری چیز ہی انہوں نے جو ہے وہ تو جی جناب الٹی ڈال دی. ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں عرفان قادر صاحب اب جو ہیں, کیونکہ وہ پرانے تو ان کے ایڈوکیٹ بیمار ہو گئے تھے, تو یہ عرفان قادر صاحب نے آج وہاں پہ جو ہیں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کے جو انڈر یہ سنوائی ہو رہی تھی اس کو کہا جی کہ یہ تو شروع دن سے ہی پورے کا پورا کیس ہی مس ٹرائل ہے, کیونکہ اس میں تو مریم کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اور اس میں بڑی میجر جو ہیں وہ مسٹیکس ہیں. और वैसे तो कानून के अंदर यह है कि स्लाइटली भी कोई स्मॉलेस्ट भी अगर कोई डाउट आ जाता है किसी केस के अंदर, तो उस डाउट का जो फायदा है वो एक्यूज को दिया जाता है. तो ये तो पूरा केस जो है इट इज रिप्लीट विद मिस्टेक्स एंड यू नो रॉन्ग रेफरेंसेज एंड ऑल दैट. तो ये आपको इनके खिलाफ जो आपने ये रेफरेंस दाखिल किया हुआ है इसको फौरन आप निकालें क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं. तो इस मौके पे उन्होंने जो हैं जस्टिसेस जो हैं आमिर फारूक और अख्तर कियानी, उन्होंने कहा भाई कि नैब ने तो हमको यही कहा है कि भाई इनके ऊपर जो है पॉलिसी ये जो पूरी उन्होंने बनाई थी और वो सामने जो वो लेकर आए थे रेफरेंस उसके अंदर, तो वो यही क्लेम कर रहे थे कि ये लोग जो हैं ये और इनके मियां साहब और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं. तो उन्होंने कहा इनके जो कादर साहब हैं उन्होंने कहा जी कि कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि कोई आपके पास प्रूफ्स नहीं है. कोई अगर प्रूफ ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इनके वो है. और ये जो है इन्होंने पहले भी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि इनके पास पूरा प्रूफ है कि कुछ लोग जो हैं गलत किस्म के इनके खिलाफ जो है वो सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाना चाहते हैं और ये सारी इनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं. तो इसमें जाहिर है कि फिर वो जजेस जो थे वो भी जरा भड़क गए. वो कहने लगे भाई आप किसकी बात माने, या तो नैब का जो अदारा है वो थाने की तरह बिहेव कर रहा है कि बस किसी को भी पकड़ के ले आए मार कुटास की किसी के खिलाफ भी केस कर दिया, या फिर आपकी बात सही है तो अगर है तो फिर वो करें. बहरहाल जी बड़े आज उन्होंने जो एडवोकेट इरफान कादर हैं इनके, उन्होंने आज तो खैर जो है काफी वहां पे जम के जो है वो किया. उन्होंने कहा नहीं ये इनके खिलाफ
हर हर लॉयर का यही होता है काम कि वो आंखें कहे
ये खारिज करें ये केस उनके खिलाफ. हाँ हाँ ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है.
मजाक रात करें
ठीक है जी. तो वो जरा आज हमारे जस्टिसेस भी जो है फारूक साहब और कियानी साहब वो जरा भड़क गए थोड़े से. ठीक है जी. अच्छा जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आजकल बड़ी एक्टिव हुई हुई है, बड़ी वो खबरों में आई हुई है. तो आज जनाब उसने जो है गवर्नमेंट को भी झाड़ दिया.
अच्छा.
पीडीआई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी झाड़ दिया. उन्होंने कहा भाई ये जो ऑपोजिशन भी और ये जो बार बार जो है कैबिनेट डिवीजन जो है ये भी हर वक्त कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर को सिंस 2018 जो गिफ्ट्स मिले हैं उनकी आप क्यों नहीं, जो तोशाखाना में है उनकी आप डिटेल्स क्यों नहीं दे रहे हैं. अच्छा ये खबर हमने पहले भी बताई थी कि यहां पे इन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई अंडर द राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 ये चीजें हम रिवील नहीं कर सकते. उसकी वजह यह है कि कुछ कंट्रीज जो हैं उनके साथ जिनके साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर हमने रिवील कर दिए क्या क्या गिफ्ट दिए और क्या. तो इस तरह ये अच्छा नहीं लगता. गवर्नमेंट ने आज बड़ा कोर्ट ने आज बड़ा डांटा है. जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि अगर एक हार भी दिया गया मामूली सा तो वो भी आप बताएं आपको क्या एम्बेरसमेंट है, आपको क्या एम्बेरसमेंट है. अगर किसी और कंट्री ने कम पैसों का गिफ्ट दिया तो उसमें आपकी क्या एम्बेरसमेंट है. और ये भी आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने गिफ्ट्स रखे हैं और तोशाखाना में कितने गिफ्ट्स भेजे हैं. तो ये डिटेल्स आपको देनी ही पड़ेंगी क्योंकि जो है ये इसने जो कैबिनेट डिवीजन थी उसने कहा कि ये बिल्कुल इनका ये जो है पीआईसी जो है उसका स्टूपिड किस्म का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये इलीगल है और इसलिए इसका ये विदाउट एनी जो है वो लॉफुल अथॉरिटी है इनका जो आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हम किसी को नाराज नहीं कर सकते और ये है वो है. तो आज फिर जस्टिस औरंगजेब ने फिर डांटा जरा. उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये डिटेल्स जो है पब्लिक के सामने लानी ही पड़ेंगी और बताना ही पड़ेगा कि जो है ये क्या क्या गिफ्ट्स हैं और वो किधर गए हैं. अच्छा जी आज अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब जो हैं उनको 2021 का मुस्तफा प्राइज लॉरिएट जो है केमिस्ट्री के अंदर उनको जो है दिया गया है. और ये नोबेल प्राइज की तरह का है जो इस्लामिक वर्ल्ड ने शुरू किया है और इसकी जो कीमत है यानी कि जो दिए जाते हैं साइंटिस्टों को जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको जो फिर प्राइज मनी दी जाती है वो 500,000 यूएस डॉलर्स है. अच्छा इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है. ऑर्गेनिक्स में इन्होंने काम किया है एंड बेसिकली ही इज अ मेडिसिनल केमिस्ट. और जो पांच साइंटिस्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड के अनाउंस किए गए थे उसके अंदर पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, मोरक्को और बांग्लादेश के जो थे वो साइंटिस्ट थे. अच्छा ये इतने काबिल हैं जी कि इन्होंने 1175 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, 76 बुक्स लिखी हैं इन्होंने, 40 चैप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी साइंस की किताबों में इनके चैप्टर्स हैं वो. और इसके अलावा 94 लोकल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इनके अंडर जो है अंडर हिज गाइडेंस जो है पीएचडी की है. ये खुद जो हैं इनके पास डिग्रीज जो हैं डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी, सी केमिस्ट्री, की डिग्रीज इनके खुद के पास हैं। तो और ये
ही
इज यंग एंड ही, आपको पता है ये कहां पे है? ये ही इज रिलेटेड टू कराची यूनिवर्सिटी माजिद भाई, उसका जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसमें ये काम करते हैं। आप सोचे जरा कैसे हाईली ये एजुकेटेड ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के अंदर। आई मीन पाकिस्तान इज रियली ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल। तो इनको जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और तमका इम्तियाज वगैरह जो है वो दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही यानी खुशी की बात है। और प्राइम
मिनिस्टर
मतलब लर्नेड तो अब छोटा वर्ड इनके लिए रह गया, ये तो मतलब स्कॉलर्स की उसमें चले गए ना, साइंटिस्ट आई मीन यू नो तो उस लेवल के ऊपर ये चले गए। तो ये जो प्राइज मुस्तफा प्राइज है ये 2012 में कायम किया गया था और ये टॉप मुस्लिम वर्ल्ड के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को दिया जाता है। तो उसमें इस दफा जो है ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं वो भी हैं। अच्छा जी, ISPR की एक आज प्रेस रिलीज आई है और ISPR की इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है जनरल बाजवा से आज ईरान का डेलीगेशन जो है, ईरान बड़ा जो है ना वो अब इलाके में एक्टिव जरा हो गया है। तो पहले उन्होंने अजरबैजान वालों से बातचीत की, अब ये आए हुए थे मिलने के लिए ईरान के जो आर्म्ड फोर्सेज के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, अपने डेलीगेशन के साथ ही आए हुए थे। तो जब ये आए तो इनको बड़ा अच्छी तरह से इनको रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फिर इनको जो है वो वहां पे GHQ में लेके गए जहां पे कि इन्होंने जनरल कमर बाजवा से मुलाकातें की। फिर इन ये लोग गए वहां पे यादगार जो शुहदा है वहां पे इन्होंने प्रेयर्स की और वहां पे अपनी जो है वो जो फ्लोरल रीथ है वो रखी। तो अच्छा ये यहां पे जो इनकी मुलाकातें हुई आपस में, इन्होंने वही बातें की कि जी रीजन के अंदर पीस कैसे लाया जाए, टेररिज्म से कैसे फाइट की जाए और ये जो चेंजिंग सिचुएशन है विद अफगानिस्तान ये कैसे इसको किया जाए। तो जनरल कवर बाजवा ने आज उनको कहा कि भाई यू आर अ मुस्लिम कंट्री एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर यू, और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम आपके साथ जो है इसी तरह अपने टाइज को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो विच इज वेरी गुड ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान।
एग्जैक्टली,
क्योंकि उनको ईरान के
रीजन के लिए अच्छा है,
रीजन के लिए अच्छा। और हमारी क्या लड़ाई है ईरान के साथ? ईरान वॉज परहैप्स, पीपल डोंट नो दिस फैक्ट, जब पाकिस्तान बना था तो ईरान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान। तो मतलब उनके साथ तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बहरहाल एनीवेज, तो कुछ पिछले कुछ दिनों में खराब हो गए थे तो अब अगर टाइज अच्छे हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये जनाब अब जो हैं चीजें हिंदुस्तान में जो रिलेटेड टू आर्यन खान साहब जो हैं वो जरा थोड़ी सी खराब होती जा रही हैं। अच्छा आज क्या हुआ, आज जो वेंसडे को कहा गया था ना आप जो है कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, बॉलीवुड के बादशाह जो हैं किंग खान के बेटे, तो अब ये जो कहा गया था कि वेंसडे को इनको शायद बेल मिल जाएगी, लेकिन आज वेंसडे के दिन भी इनको बेल नहीं मिल सकी है। हुआ क्या है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, जो कि NCB को, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई में, उन्होंने कहा है जी कि हमारे हमने आर्यन खान के पास से जो है व्हाट्सएप चैट्स जो हैं इसकी वो हमने ट्रेस की हैं, जिससे कि लगता है कि आर्यन खान 23 साल का बच्चा जो है वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ इन टच है। तो एज अ रिजल्ट हमने इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अब वो सारी चैट फॉरवर्ड की है और हमने कहा है कि भाई फाइंड आउट करो कि ये इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स कौन है जिससे कि इलिसिट प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की जा रही है। अगर ये खुद इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी। तो वहां पे उनके जो लॉयर हैं अमित देसाई, जो कि आपको पता है कि इंडिया के टॉप क्लास लॉयर हैं, जिन्होंने सलमान खान का भी हमने आपको बताया था कि केस लड़ा था, तो उसने कहा है कि ये दिस इज इनहेरेंटली अब्सर्ड व्हाट एनसीबी इज सेइंग। एक तो नंबर वन ये कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली हैं, फिर उसके बाद यह है कि उसको इस स्टेज के ऊपर जब ड्रग्स मिली नहीं है तो बेल क्यों डिनाई किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट लॉ। अगर आपके पास से कुछ मिला नहीं है तो उसको तो एटलीस्ट बेल तो आपको ग्रांट करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये सारे यंग एडल्ट्स हैं सिर्फ, ये कोई ड्रग पैडलर्स या ट्रैफिकर्स नहीं है, तो आप इनके ऊपर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं, आपको इनको छोड़ना चाहिए, बेल पे तो छोड़ना चाहिए इनको। तो वो कहते हैं जी बहुत सारे कंट्रीज में तो वैसे तो इस लड़के के ब्लड में, इस बच्चे के ब्लड में कोई ड्रग्स मिले नहीं है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उसमें एक सर्टन अमाउंट में ड्रग लेना तो अब लीगल है, जैसे कि आप कैनेडा में है मैरिजुआना आप ले सकते हैं, लीगलाइज कर दिया है यहां पे, उसमें अमरीका के कुछ स्टेट्स में लीगलाइज है। तो वो कहते हैं जी कि ये आप सिचुएशन जो है, कोर्ट को उन्होंने आज अमित देसाई साहब ने कहा है कि ये आप सिचुएशन बैड टू वर्स करते करते जा रहे हैं, उन बच्चों ने काफी सफर कर लिया है, लेकिन अब इनको जो है इनको अपना लेसन जो है वो मिल गया है कि गलत लोगों में यानी उठना बैठना नहीं चाहिए। अगर इफ देयर इज एनी एट ऑल, उसने ये भी कहा मैं डिसाइन है, तो उन्होंने कहा जी कि अब इनको आपको बेल जरूर देनी चाहिए। बहरहाल जी अब ये केस जो है फिर से डेफर कर दिया गया, तो अब देखेंगे इसके अंदर जो है फिर क्या होगा। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था कि वो जो पीडीपी की जो है चीफ महमूदा मुफ्ती साहबा, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने भी कहा था कि इसको इसलिए आर्यन जो है बच्चा इसको किया जा रहा है क्योंकि ये शाहरुख खान का बेटा है, इसके नाम के साथ खान है। एग्जैक्टली वही सिमिलर बातें जो हैं आज जो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कही हैं। आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन भी हैं ये और बड़े जबरदस्त एक्टर भी हैं। इन्होंने कहा जी कि ये जो आर्यन खान को पकड़ा है और जो बॉलीवुड की जो खामोशी है वो इसलिए है कि उसमें बेहिसी है बॉलीवुड में, हर बंदे के ऊपर जिसके के ऊपर मुसीबत पड़ती है दे फाइट देयर ओन बैटल्स, कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता है। वो कहते हैं जी इसके आर्यन खान को इसलिए पीनलाइज किया जा रहा है कि ये शाहरुख खान का बेटा है, वरना इसके साथ ही मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट जो है वो भी पकड़े गए हैं, उसको मीडिया क्यों इतनी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं ला रहा, ये आर्यन को इतनी ज्यादा लाइमलाइट में क्यों लाया। वो कहते हैं आपको पता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस्सा हुआ था वहां पे भी बेशुमार लोग थे जो के आके जिन्होंने के जो बैठे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वो जो थी बाकी के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मीडिया में हाईलाइट किया गया वो जो दीपिका पाडुकोन जाके बैठ गई थी वहां पे उनके साथ। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह जो बड़े हाई अप्स के बच्चे या हाई अप्स होते हैं मीडिया उनकी स्क्रूटनी करती है और इसी तरह करती है। और वो कहते हैं जी कि ये मुझे तो हैरत है कि एनसीबी किस तरह से कर रही है, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी के ऊपर कोई ड्रग्स के चार्जेस होते हैं तो उनके यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर इन द ड्रग केस। वो कहते हैं अभी तक आर्यन खान का यूरिन और ब्लड टेस्ट क्यों नहीं किया था इसने एनसीबी ने, विच मीन्स के कुछ तो चल रहा है गलत बीच में, तो वो इसीलिए चल रहा है कि ये शाहरुख खान का बेटा है इसलिए इसको ज्यादा वो कर दिया है। और उन्होंने कहा है जी कि ये चूंकि अब खान भी जो है इसके साथ ज्यादा खड़े नहीं हो रहे, चुप करके बैठे हैं, क्योंकि पिछले कई अरसे से इनको अटैक किया जाता है और इनको कहा जाता है कि अगर तुम्हें इंडिया में तकलीफ है तो तुम जा पाकिस्तान जाओ, कहते हैं इंक्लूडिंग शाहरुख खान। कहते हैं एक दफा इसने एक छोटा सा सेंटेंस कह दिया था कि जो हमारे मुल्क में जो इंटॉलरेंस चल रही है ठीक नहीं है, इस तरह का कुछ एक आई मीन सिमिलर समथिंग सिमिलर नॉट रियली एग्जैक्टली दिस, तो उस पर इसको भी कहा था, जैसे दूसरों को कहा गया इसको भी कहा कि तुम भी पाकिस्तान जाओ, तुम्हें बहुत तकलीफ है हिंदुस्तान में। तो वो कहते हैं जी बस इसलिए इनको अब टारगेट किया जाता है और इसलिए लोग जो हैं फिर अब ये बेचारे जो खान्स हैं ये फिल्म इंडस्ट्री के ये अब चुप करके जो हैं वो बैठते हैं। अच्छा जनाब, मजे भाई आपने स्क्विड गेम्स देखी है नेटफ्लिक्स की जो है स्क्विड गेम?
नहीं मैंने देखी।
नहीं देखी? ओह हो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट वॉच, आई हैव सीन दैट, इट इज सो 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 इंटरेस्टिंग। अच्छा मैं इसका थोड़ा सा प्लॉट आपको बता देती हूँ, वो ये है कि ये सब लोग जो है जो इसके अंदर वो लेकर आए हैं उनको वो कहते हैं जी कि तुम्हारा बहुत ही बुरे हालात में है, इनको पैसों की डेस्परेटली इनको जरूरत है, तो वो कहते हैं हम आप सारों को बच्चों वाली गेम्स खिलाएंगे, तो उन बच्चों वाली गेम्स में अगर आप आप अगर सर्वाइव कर गए तो आपको जो है 40 बिलियन येन जो है आपको कुछ ऐसे समथिंग लाइक दैट या युआन जो है वो जो साउथ कोरियन वो आपको शायद मिलेगा। तो उसके अंदर ये जितने भी डेस्परेट लोग हैं जिनके के पास कोई और चारा नहीं है, उनको लगता है कि बस अब मर जाएंगे, वो सारे ये गेम खेलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मरते चले जाते हैं। ये जो बीच में लड़का अगर जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको समझ आएगी, जो बीच में ये लड़का खड़ा हुआ है ना ये फाइनली फिर जीत जाता है, तो इन सारों को बड़ा फेम मिला इससे। नेटफ्लिक्स का कहना है कि हमारी हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ नेटफ्लिक्स, दिस साउथ कोरियन ड्रामा स्क्विड गेम हैज बिकम वन ऑफ द हाइएस्ट वॉच्ड, दिस हैज गार्नर्ड 111 मिलियन फैंस।
वाओ,
हाँ, और वो कहते हैं जी उन्होंने बड़ा थैंक किया और फिर उन्होंने एक छेड़ने के लिए भी एक सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ नेटफ्लिक्स ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा चांस मिले तो आप ये गेम खेलेंगे टू विन दिस मच मनी? तो मेरा तो जवाब है बिल्कुल नहीं।
डिपेंड्स करता है क्या गेम,
लाइफ लाइफ अगेंस्ट,
आई हैवंट सीन द गेम्स, आई कैनॉट मेक अ कमेंट ऑन इट,
दे आर सिंपल गेम्स बट दे आर पीपल आर किल्ड, दे आर एब्सोल्युटली एलिमिनेटेड, दैट्स द थिंग,
नॉट किल,
एब्सोल्युटली किल, यही तो चीज है उसमें, यही तो चीज है वहां पे, बहुत वो यही तो दिखाया उस गेम में। अब मैं आपका फन खराब नहीं करना चाहती, लेकिन एक अमीर आदमी है वो यही तो कह रहा है कि क्या हम बच्चों वाली भी गेम्स कर सकते हैं, जैसे वो कहते हैं ग्रीन रेड ग्रीन, तो ग्रीन पे आपने चलना है और रेड पे आपने एकदम रुक जाना है, और अगर आपकी हल्की सी भी ऐसी भी मूवमेंट है चाहे आपने ऐसे भी किया ना गोली मार देते हैं आपको।
मतलब नॉट लिटरली गोली मारते हैं,
लिटरली गोली मारते हैं, तभी तो वो आखिरी लड़का एक जीत गया एंड पे. दैट्स व्हाट दे हैव शोन.
आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट.
हाँ, स्क्विड गेम. तो यही तो वो स्टोरी है उसकी सारी. और इसी तरह वो देते हैं, जैसे एक उनको कैंडी देते हैं, कहते हैं ये कैंडी का जो पैटर्न है ये आपने निकालना है, लेकिन ये अंदर का पैटर्न नहीं टूटना चाहिए, जैसे ही टूटेगा आपको गोली मार देंगे, थिंग्स लाइक दैट. सो ऑल बच्चों वाली गेम्स हैं. और अब मतलब यू नीड टू सी दैट. आई मीन आई डोंट रियली वांट टू स्पॉइल योर फन. तो इट हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर. ओके जनाब, आज हमारे कैनेडा पोस्ट जो है उसने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प निकाला है क्रिस्टोफर प्लमर के ऊपर जनाब. और उन्होंने इसके अंदर जो उनकी मशहूर जो बहुत सारी जो फिल्में हैं उनको इसके अंदर डिपिक्ट किया इस स्टैम्प के अंदर. आपको पता ही है कि 70 ईयर का लॉन्ग करियर था ये क्रिस्टोफर प्लमर का. टोरंटो बॉर्न स्टार थे ये, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 91 इन फरवरी. तो ये सामने जो आपको नजर आ रहा है वो तो टेम्पेस्ट की पिक्चर नजर आ रही है, और उसके बाद आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आएंगे एक इनका रोल जो किंग लियर में था, रुडयार्ड किपलिंग की 1975 एडवेंचर फीचर था द मैन हु वुड बी किंग, कैप्टन जॉर्ज वॉन ट्रैम्प इन 1965 म्यूजिकल फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक, और जॉन बैरीमोर जो जिसमें कि उन्होंने प्ले किया था बैरीमोर का रोल. तो वो सारी जो इनकी हैं, वो कहते हैं कि ये जब हम स्टैम्प बना रहे थे जस्ट बिफोर हिज डेथ, उन्होंने खुद ये सारी जो थी वो चीजें हमारे साथ सिलेक्ट की थी कि मेरी ये फिल्मों के जो पोस्टर हैं ये इसके ऊपर आने चाहिए. तो ये उन्होंने जी,
ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर,
अमेजिंग. और मुझे पता नहीं था जब तक मैं छोटी थी कि ये कनेडियन है. जस्ट वेरी रिसेंटली आई फाउंड आउट. अच्छा जनाब, आज अल जजीरा ने एक इंटरव्यू किया है जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड अजीजुल्ला फाजिल जो हैं चेयरमैन हैं जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अफगानिस्तान में, उनका इंटरव्यू आज अल जजीरा ने किया. तो अल जजीरा ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे मुल्क में क्या चल रहा है, ये तुम औरतों को क्यों नहीं खेलने दे रहे हो. तो उन्होंने आज बड़े रेवलेशन किए हैं. उन्होंने कहा जी कि हमने तो, मेरी तो खुद डायरेक्टली बात हुई है तालिबान के टॉप ऑफिशियल से, उन्होंने हमें ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं भेजा है इस चीज पे कि औरतें खेल नहीं सकती हैं. और हमारे पास तो औरतों की टीम्स जो थी पिछले 18 साल से थी, बट दे वर नॉट द मेजर टीम्स, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे ही नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे ही नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट करें. लेकिन हमारा एक इस्लामिक तरीका है, अगर ये लड़कियां इस्लामिक तरीके से लिबास पहनती हैं तो हर गेम खेल सकती हैं, ये इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. द सेम केस विच इज लाइक इन ईरान फॉर एग्जांपल, हर तरह की गेम करती हैं, हर तरह की वो स्पोर्ट्स चीजें कर सकती हैं, बट दे हैव टू कवर अप देमसेल्फ. तो उन्होंने कहा जी कि ये शॉर्ट्स पहन के जो है स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द इस्लामिक अटायर. तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है जी, उसने अब 26 प्रोबेबल्स का अनाउंसमेंट किया है जिनको कि ट्रेनिंग अब दी जाएगी नेशनल ट्रेनिंग कैंप में फॉर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अब ढाका में होने वाली है दिसंबर 14 से 22 में. तो इसके अंदर जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया. और इसके अंदर जो एक्स ओलंपियन है ख्वाजा जुनेद, उनको हेड कोच के तौर पर अभी रखा गया है. और ये जो कैंप है ये अक्टूबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, और प्रोबेबल्स जो हैं उनको रिपोर्ट करना है अक्टूबर 21 को ही सुबह के वक्त बिफोर द ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे. तो ये जो है ये अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी तो बिल्कुल ही मरती ही जा रही है और इस तरह से. एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज टुडे इज अबाउट आईपीएल. आपको हम बता ही रहे थे कि जो जीतेगा आज का जो सेकंड क्वालिफायर जीतेगा वो जाएगा उसके अंदर फाइनल के अंदर. तो जनाब आज फिर से केकेआर ने, शाहरुख खान की जो टीम है उसने बीट किया है दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से. शारजा क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच था, और अब इनका क्लैश है फाइनल में चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट ऑन अक्टूबर 15th. और जो केकेआर के जो कैप्टन थे इन मॉर्गन, उन्होंने ऑप्ट किया था टू बॉल फर्स्ट, और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था दिल्ली को फॉर 135 फॉर 5. और केकेआर जो है उन्होंने ये रीच किया था टारगेट 136 फॉर 7 का इन 19.5, यानी कि अब बॉल टू स्पेयर. तो जनाब ये अब इनका फाइनल में मैच है केकेआर एंड सीएसके.
There you go. ये थी आज की हमारी खबरें. और बस साहब, बकिया की खबरें चाहिए आपको कल? आपने फिर ज्वाइन होगा बस 5:30 बजे कल फिर से हम आपके साथ होंगे, और बकिया की सारी खबरें आपसे लेके कल 5:30 बजे तक की खबरें आपको हम पेश करेंगे. थैंक यू सो मच शाजी जी.
थैंक यू मच भाई. एंड
बस अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, चलते चलते गुजारिश पहले ये म्यूजिक. جی صاحب, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس چلتے چلتے ایک گزارش اور التجا جو ہمیشہ کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا, کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھا کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خاص طور سے ہمارے دوست ہمارے بھائی مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنا سفر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کے درجات کو بلند کرے, انہیں جلد اور فردوس میں عطا فرمائے. آمین سما آمین. بشرط زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.
عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کہ دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دعا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی سے دعا مانگتا ہوں.
جو بھٹکے ہیں ان کو ہدایت عطا کر, جو مظلوم ہیں ان کو طاقت عطا کر. میں سب پہ کرم مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں,
کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music. You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM. हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288. इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं. हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com. लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप. रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी. फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com.
बनू मैं तेरे सब्सक्राइब करिए सपना सफू ऑफिशियल चैनल को। अब लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा।
इजाजत हो ना, टूटे दिल मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं, तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं, ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ,
तेरी खैर मंगती मैं, हो टूटे दिल की डोर एक तेरी खैर मंग दे, अब कोई चले ना दूर एक तेरी खैर मंग दे। हमें सुन मेरी टूटे यारे की समझे अपने आप, मेरी मगर तू की कर दी ये गल बस तू ही जानी। मैनू सफाइया पेश न कर रब को लो थोड़ा जी हाथ है, सिख जाके प्यार कर दे बाबो झूठे संग साडे एक एक पल। बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार किया है तू।
जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है। किससे बहारों के बीते नजारों के, किससे बहारों के बीते नजारों के, फिर गाके सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद आती है। बताओ क्या ये चांदनी जाकर, इतना तो बताओ क्या ये चांदनी जाकर, कोई ख्वाब जगाती है और तुमको सताती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद आती है। जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो, फिर भूल के सब बातें मेरे पास आ जाना और तोड़ के सब नाते मेरे पास आ जाना, फिर लौट के मत जाना। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है।
आशिकों की आंखों में जो पानी है, सब इन हसीनाओं की मेहरबानी है।
Yeah. एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम।